शांति। एक बार हम सब मिल करके उस रीति से ओम शांति कहेंगे जैसे हम सब ने सुना है यज्ञ के आदि में सभी मिल करके बाबा और ब्राह्मण वत्स सब मिल करके ओम शांति कहा करते थे। उस समय तो विशेष ओम की ही ध्वनि होती थी, तो अंदर गहरा श्वास लेंगे और उस श्वास को निकालते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और फिर दूसरा गहरा श्वास लेकर उसे निकालते हुए शांति की ध्वनि। वास्तव में ये ओम शांति की ध्वनि ही है जो हम सभी को, जैसा कि आज का विषय है कर्म योग द्वारा कर्म भोग पर विजय, तो ये ध्वनि ही है जिसके यथार्थ भाव में स्थित होने पर हम सहज ही इस विजय का अनुभव कर लेते हैं कर्म भोग के ऊपर, कर्म योग के द्वारा विजय का। और आज की जो मुरली हम सब ने सुनी, साकार मुरली, उसके अंदर भी इन बातों के ऊपर बाबा ने काफी बीच बीच में प्रकाश डाला कि किस प्रकार से कर्म योग के द्वारा हम अंत तक सब विजयी कर्मातीत बनते हैं और जो भी शरीर के हिसाब किताब हैं, क्योंकि अंतिम पेपर बाबा ने कहा ही है यह शरीर का पेपर, ये अंतिम पेपर हम सबका है। हम सब ज्ञान योग सेवा के द्वारा, धारणाओं के द्वारा अपना सारा हिसाब किताब पूर्व जन्मों का वो सब तो चुपतू कर रहे हैं, और जो कुछ भी अगर बचा खुचा रह जाता है वो अंत में इस शरीर के द्वारा ही सारा हिसाब किताब हमारा वो चुपतू होता है। जो भी वैसे भी बाबा ने कहा है जो भी पुराने हिसाब किताब हैं, हम सब तीन रीति से चुकतू करते हैं, या तो योग के द्वारा, योग ऐसा ज्वालामुखी हो जिसमें हमारे सारे पुराने संस्कार वो सब दग्ध हो जाए, योग के द्वारा या रोग के द्वारा, और तीसरा है भोग के द्वारा। योग रोग भोग, शरीर के जो भी भोगनाएं हैं उन सब के द्वारा हमारे यह सारे हिसाब किताब और अंत में आत्मा को बिल्कुल ही क्लीन स्लेट बन करके अपने घर बाबा के साथ हम सबको वापस जाना है। इसलिए अंत के जो टारगेट है, अंत का जो लक्ष्य है, वो अगर हमारे माइंड में क्लियर होता है, दिल दिमाग के अंदर स्पष्ट होता है, तो उस लक्ष्य को हासिल करना कोई कठिन बात नहीं होती है। और जैसे ही ये विषय बताया गया तो इस विषय विषय को सुनते ही हमें साकार ब्रह्मा बाबा की स्मृति आ गई, क्योंकि आप सभी जानते हैं और ये महीना चल भी रहा है अव्यक्त मास का। बाबा ने कैसे 18 जनवरी 1969 को अपनी संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करके और लास्ट फरिश्ता स्थिति कहें, अव्यक्त स्वरूप स्थिति कहें, कर्मातीत अवस्था उसको प्राप्त किया था। और 18 जनवरी को बाबा का ये साकार बाबा का इस देह का जब उन्होंने त्याग किया, उसके बाद 21 जनवरी को उस शरीर का साकार ब्रह्मा बाबा का पिताश्री बाबा का अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद जब भोग प्रतिदिन लगता था 13 दिन तक, तो संदेशी अलग अलग नए नए संदेश लेकर के आती थी और जो बच्चों के प्रश्न होते थे, कोई बात होती थी तो वो बाबा से पूछते थे और बाबा उसका उत्तर भी देते थे। आज के इस टॉपिक के संदर्भ में हमें याद है कि जब चौथे दिन की बात थी शायद, क्योंकि हमें ये सौभाग्य मिला था कि हम भले बहुत दूर थे आसाम में पोस्टेड, लेकिन 17 जनवरी को यहाँ सुबह आ गए थे और 17 जनवरी के बाद से यहाँ पर आगे तक रहे थे। तो एक तो सामने ही हमारे बाबा ने अब संपूर्ण स्थिति को प्राप्त किया, जो कि हमें अपनी आँखों से वो दृश्य भी देखने के मौके मिले। और जब ये संदेश में बाबा से बच्चों ने पूछा कि बाबा बाकी तो सब हमने स्थिति देखी, सब कुछ हमारे सम्मुख था, लेकिन जब अंतिम समय था उस समय आपकी क्या अनुभूति थी, क्या अनुभव था जब आत्मा शरीर छोड़ने को जैसे तैयार थी? तो बाबा ने कहा, संदेश में उत्तर दिया कि ये अंतिम खेल जो था, ये भी देखो बाबा को एकदम खेल जैसा लग रहा था, ये अंतिम खेल था ही करीब 10-15 मिनट का। क्या खेल था? कि एक तरफ योग बल और दूसरी तरफ कर्म भोग, इन दोनों की बड़ी गहरी युद्ध चल रही थी। और कर्म भोग जो था वो बहुत भारी था। कर्म भोग माने जैसे दर्द हार्ट में, सीने में बहुत तेज दर्द था। तो एक तरफ वो दर्द बहुत था, वो स्थिति थी, और दूसरी तरफ बस योग बल। हाँ, मैं बाबा को याद कर रहा था, बाबा बस मैं अब तो आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आया कि आया बाबा। तो बाबा ने ये स्थिति बताई कि एक तो ये बात का अनुभव हो रहा था, कर्म भोग बहुत हैवी है, भारी है, और मैं बाबा को याद करता जा रहा था। धीरे 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 कर्म भोग हल्का होता चला गया और योग बल की स्थिति और गहरी होती चली गई। यानी कि पहले बाबा शिव बाबा को याद कर रहे थे और फिर धीरे 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 अव्यक्त और बिंदी रूप स्थिति में बाबा समाते जा रहे थे शिव बाबा में। ये एक दूसरी स्थिति थी, और साथ ही साथ एक तरफ बच्चों की शुद्ध स्नेह की वाइब्रेशंस वो बाबा के पास आ रही थी, वो भी बाबा को खींच रही थी, बच्चों की शुद्ध स्नेह की वाइब्रेशंस। और उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के बाद बाबा ने अनुभव किया कि कैसे आत्मा ये शरीर छोड़ रही है। शरीर के एक एक भाग से आत्मा की शक्ति जैसे खिंचती जा रही है और बाबा जैसे बिल्कुल संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता स्थिति में रहकर साक्षी होकर के बाबा ये देख रहा है कि कैसे आत्मा अपनी एनर्जी अपनी शक्ति शरीर से धीरे धीरे खींचती जा रही है और चारों तरफ जैसे सन्नाटा छाता जा रहा है। कई बार साकार मुरली में भी बाबा का आता है ना, जब बहुत कोई बहुत बड़े महान योगी होते हैं, एकदम शांत सन्नाटा छा जाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ये देख रहे थे एकदम सन्नाटा छाता जा रहा है। ये बाबा ने अपनी अंतिम स्थिति का वर्णन करके बच्चों को बताया। तो ये बच्चों को भी क्यों बताया, क्योंकि हम सबको भी शरीर तो छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम भी ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ें कि जो गायन है अंतमति सो गति का गायन, तो अंत में हमारी भी ऐसी स्थिति हो, क्योंकि जब आत्मा शरीर को छोड़ेगी तो जो भी बचे कुचे हिसाब किताब होंगे वो सब सम्मुख आएंगे। लौकिक में भी दुनिया में कहते हैं ना कि भाई जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो उसके सामने पूरे जीवन की फिल्म जैसे घूम जाती है, सारी घटनाएं उसके सामने आ जाती हैं। और फिर वो लोग तो बहुत बातें बताते हैं कि जो इतना अच्छे कर्म किए हैं या खराब पाप या पुण्य आदि आदि, उस अनुसार व्यक्ति की भोगना होती है। और हम लोगों का तो अच्छे ही कर्म होंगे, क्योंकि जो भी पाप कर्म है वो सब तो हम भस्म कर रहे हैं, जहाँ तक हो रहा है योग के द्वारा, शारीरिक व्याधियों के द्वारा, भोगनाओं के द्वारा, जितने हिसाब किताब हैं सब चुकतू करते चले जा रहे हैं। इसलिए अंत में तो बस हमारा अच्छाई और कोई नहीं, बस यही संकल्प रहेगा कि बाबा अब हम आपके पास आए ही आए, ये मानसिक स्थिति रहे। बाबा का भी यही देखा हमने, देखा जब, और ये स्थिति बनते बनते समय लगता है, इसके लिए बहुत गहन पुरुषार्थ करना पड़ता है। और बाबा का भी हमने देखा, क्योंकि जब हम सभी चाहते हैं हमारी अंतिम स्थिति ऐसी हो, बस अंतमते सो गति, कोई और याद ना आए और बिल्कुल बाबा की याद में ही शरीर छोड़े, न व्यक्ति न कोई वस्तु न वैभव न कोई संबंध, कोई भी याद ना हो, एक बाबा की याद, तो वो वास्तव में गति सदगति है अनसमय। और उसके लिए हमें जो जो पुरुषार्थ करना है वो उसकी एक झलक यहाँ आपको दिखाते हैं कि अंत समय तक हमारे भी स्थिति कैसी हो जाएगी। अंत माने हरेक का अंत समय अपना अपना है, जब वो शरीर छोड़ता है उसका अंत समय अपना हरेक का, लेकिन वो ही हमारी जैसे संपूर्णता की स्टेज है। इसीलिए उसके लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है, और हम भाग्यशाली है कि अंतिम दो दिनों में हमने साकार बाबा की वो स्थिति 17 और 18 जनवरी 1969 को अपनी आंखों से देखी। और वो स्थिति जैसी हम धारण करेंगे और अंतिम में उस स्थिति में अगर हमारी भी देह त्याग हुई, तो ये निश्चित है, गारंटेड है कि हम भी अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके और विजयी रतन, जैसा है ना, कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय, तो हम भी पूरी विजय प्राप्त करके ही यहाँ से जाएंगे। और जहाँ विजय होती है, जीत होती है, वहाँ खुशी होती है, आनंद होता है, उत्सव होता है। तो इसीलिए उस विजय को पाने के लिए बाबा ने क्या किया, तो साकार ब्रह्मा बाबा का वैसे तो जब से ज्ञान में आए थे तब से बहुत बार बाबा से मिले थे, लेकिन अंतिम दो दिनों में हमने क्या स्थिति देखी बाबा की कि बाबा बिल्कुल जैसे कि एक तो उपराम हो गए थे। पहले हम लोग बाबा से जब मिलते थे तो बाबा बच्चों से हालचाल पूछते थे, हिसाब किताब कैसे क्या पुरुषार्थ चल रहा है, और कोई करेक्शन होती थी बाबा देते थे, तो हम लोग पूछा करते थे बाबा बताते थे उत्तर समाधान। लेकिन अंत में हमने देखा इन दो दिनों में कि बस बाबा के सम्मुख जाते थे और बाबा थोड़ी दृष्टि देते थे और दृष्टि देखकर ही नैनों से मन का हाल पढ़ लेते थे और क्या हम पूछने आए हैं, और बाबा तुरंत कहते थे कि बच्चे अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, यानी प्रश्न भी बाबा बता देते थे और उसका समाधान भी बाबा। एक बार हुआ, दो बार हुआ, इन दो दिनों में लगभग 6-7 बार ऐसा अनुभव हुआ। हर बार जब भी बाबा के सम्मुख जाते थे तो ऐसा एक ये जो स्थिति है इसी को ही बाबा कौन सी स्थिति बोलते हैं, मन जीते जगत जीत। जिसने अपना मन जीत लिया उसने जैसे जगत को जीत लिया। तो मन को जीतने का मतलब मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं, कोई भाव स्वभाव नहीं, और बस मन को जीतने यानी कि संकल्पों के ऊपर संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त करना, जैसे कंप्लीट बाबा के प्रति ऑनेस्ट बन जाना, जैसे आज के वरदान में भी था ना कि जिसमें संकल्प वाणी कर्म इन सब के ऊपर भी पूरा का पूरा समय श्वास हर एक के ऊपर वो जो है अपना पॉजिटिव नियंत्रण, कोई भी समय संकल्प उन चीजों में न जाए, पर चिंतन परमत में नहीं। बाबा ने बताया आज तो वो सच्चा ऑनेस्ट, तो वो ही बात बाबा बोलते हैं। इसीलिए तभी सच्चाई को क्या कहा गया है, हम इतने सत्य इतने ट्रांसपेरेंसी हो जाए, पारदर्शिता हमारे जीवन में हो जाए, जो बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहब राज। जितना हमारे अंदर ये सच्चाई सफाई आ जाएगी उतना साहेब यानी परमात्मा बाबा हमारे ऊपर राजी होगा, और जब बाबा राजी और क्या चाहिए, भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न है तो भगवान का सारा वर्षा वो हमारा अधिकार हो जाता है। इसीलिए एक तो ये हम करें धीरे धीरे करके जो भी व्यर्थ संकल्प है, तो संकल्प तो बात की स्टेज होती है, पहले हमें देखना है व्यर्थ इन कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई व्यर्थ ना हो, इस मुख के द्वारा कोई व्यर्थ बोल ना निकले, इन और कर्मेंद्रियों के द्वारा कोई व्यर्थ व्यवहार ना हो। जितना जितना व्यवहार कर्म बोल हमारे व्यर्थ से समर्थ होते चले जाएंगे उतना उतना क्या होगा कि अंत समय संकल्पों तक हम इतने समर्थ हो जाएंगे कि संकल्प भी वो ही हमारा चलेगा जो सिद्ध होने वाला होगा, कोई भी एक्स्ट्रा व्यर्थ संकल्प नहीं चलेगा, और ये अभ्यास से ही आएगा। और उसी के लिए आज भी बाबा ने कहा पोता मेल रखो, जब पोता मेल रखते हैं उसके अंदर संकल्पों का भी लिखते हैं तो फिर पता चलता है अच्छा आज इतने है, चेकिंग होती है, और जहाँ चेकिंग होती है फिर वहाँ चेंज भी अवश्य होता है। इसीलिए एक तो संकल्पों के ऊपर ये चेकिंग हो, और जितना संकल्पों पर हमारा नियंत्रण होगा उतना हम दूसरे के संकल्पों को देख करके पढ़ करके उसके नैनों से पढ़ करके उसके वाइब्रेशन से उसके दूसरों के ऑरा से उन संकल्पों को पढ़ के और उन्हें हम उस जो भी प्रश्न लेकर वो आत्मा आएंगी अंत समय हम लोगों के सम्मुख उनके प्रश्नों का समाधान भी हम बिना उनके पूछे कर सकेंगे, जैसा बाबा का देखा। और वो तब हो सकेगा जब हमारे मन के अंदर कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं हो, और ये आएगा धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा। इसीलिए इस अभ्यास में एक तो ये देखना है, हमें याद है कई साल पहले गुलजार दादी जी यहाँ थे, हम लोगों की पट्टी कुछ चल रही थी तो क्लास दादी जी का था, तो दादी ने कहा कि भाई बाबा ने आज मुझे खींचा था वतन में, और बाबा ने कहा कि इन बच्चों को मैं एक सर्टिफिकेट तो सब बच्चों को देता हूँ जो बैठे हैं, क्या कि इनके किसी के कोई विकारी संकल्प नहीं चलते हैं। सब बच्चे खुश हो गए, और वास्तव में थे भी बहुत सब, ज्यादातर सभी बहुत सीनियर्स, तो इसीलिए कई कई साल ज्ञान में हो गए थे, इसलिए काफी हद तक तो उन सब की ऐसी स्टेज थी। फिर बाबा ने कहा ये सर्टिफिकेट तो बाबा देता है, लेकिन बाबा एक बात और कहता है, विकारी संकल्प नहीं लेकिन व्यर्थ संकल्प अभी तक भी चलते हैं, इसीलिए अब बच्चों को व्यर्थ संकल्पों को विकारी संकल्प जैसा ही ट्रीट करना है। जैसे अगर कोई विकार का संकल्प आया तो हम उसको मतलब अछूत समझ करके उससे दूर एकदम तुरंत हो जाते हैं, लेकिन हम सबका अनुभव है कोई व्यर्थ संकल्प है किसी का, कोई परचिंतन है, निंदा है, ईर्ष्या है, इस बात को हम इतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना विकारी संकल्पों को लेते हैं। तो बाबा ने कहा अब व्यर्थ संकल्प भी अगर वो आता है कोई, तो उसको इस तरह ट्रीट करो जैसे ये विकारी संकल्प है, और उसे तुरंत ही जैसे ही कोई भी व्यर्थ संकल्प भी आना शुरू करे उसकी श्रृंखला नहीं बनने दो, और शुरू में ही उस संकल्प को एकदम खत्म कर दो। तो इसीलिए, और ये तब होगा जितना जितना हम अपने स्वाभिमान में स्थित होंगे उतना उतना ये व्यर्थ संकल्प आएंगे ही नहीं आएगा। हम अगर स्वाभिमान में होंगे, हमारा ऑर्डर, हम ऑर्डर करेंगे कि बस ये संकल्प तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, तुम जाओ दूर, और वो हमारा ऑर्डर मान के, हुक्म मान के, अगर हम स्वाभिमान की सीट पर सेट होकर के उसे ऑर्डर करेंगे। तो इसलिए एक बात तो ये देखनी है, बाबा ने भी ना पहले ये किया जब बाबा अनुभव करते थे कि अरे पुराने संकल्प तो अभी भी आ रहे हैं, अभी भी मेरी बुद्धि भागती है, क्योंकि बाबा भी गृहस्थी था, ब्रह्मा बाबा भी पत्नी थे, पांच बच्चे थे, पूरा भरा पूरा परिवार था, व्यवसाय था, हीरे जवाहरात का इतना बड़ा, चारों तरफ अलग अलग शहरों में, तो इसीलिए बाबा बुद्धि जाना स्वाभाविक था। तो जब बाबा ने ये अनुभव किया तुरंत बाबा ने उस पर एक्शन लिया, यानी अपने मन को पत्र लिखा, जो बाबा कहते हैं ना अपनी रोज दरबार लगाओ मन बुद्धि की, तो बाबा ने भी मन बुद्धि की रोज दरबार लगाते थे जैसे, और दरबार लगा के माने अपने मन से अपने आप ही बातें करना, क्योंकि हमें तो मालूम है आज मेरे मन में क्या क्या संकल्प पैदा हुए, चलो वाणी और कर्म की बात कुछ हद तक दूसरों को पता चले क्योंकि उनमें दूसरों का भी एक पार्टिसिपेशन होता है, वाणी से जो बोलेंगे दूसरे सुनेंगे, जो व्यवहार में कर्म में करेंगे दूसरे देखेंगे, लेकिन मन में अगर कोई बात आती है वो तो हम ही जानते हैं। इसीलिए बाबा ने सबसे पहले मन को पत्र लिखा कि हे मन, मैं आत्मा राजा हूँ, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू इतना बलशाली हो गया कि तूने मुझ आत्मा राजा को अपने वश में कर लिया, और जहाँ जहाँ तू भागता रहा चलता रहा मैं आत्मा राजा भी तेरे पीछे पीछे भागती रही, लेकिन हे मन अब मैं तुझे कह देता हूँ कि अब मैं आत्मा राजा पुनः अपने स्वस्थिति में स्थित हो रहा हूँ, हो गया हूँ। अब मैं तेरे कहने पर नहीं चलूंगा, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं राजा हूँ और तू मंत्री है, तू मेरे अंडर में है। तो अपने मन को हम भक्ति मार्ग की तरह ये न कहे क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, टिकता नहीं एक जगह। नहीं, उसको ऑर्डर करो, नहीं मन तुझे ये नहीं सोचना है, तुझे ऐसा करना है, तुझे ये नहीं करना है। ऑर्डर देंगे तो मन जो है फिर हमारे वशीभूत हो जाएगा। बाबा ने यही किया, मन और बुद्धि को ऐसे पत्र लिखा। तो इसीलिए एक तो अगर हम ये चाहते, क्योंकि अंतिम पेपर जो है ना हमारा, बाबा ने कई बार बताया है, उस पेपर को पास करने के लिए हमारी कैसी अवस्था होनी चाहिए? साक्षी स्थिति, साक्षी दृष्टा की स्थिति। क्योंकि अंतिम पेपर में चारों तरफ ऐसे दृश्य आएंगे हमारे सामने जो भयानक भी होंगे और हमारे मुंह का, हमारे संबंधों का टेस्ट लेंगे। हमारे निकट वाले जो संबंधी हैं, मित्र हैं, वो सब भी ऐसी स्थिति में होंगे, उन्हें देखकर ही हम भय खा सकते हैं। ऐसा चारों तरफ हाहाकार होगा, प्रकृति के पांच तत्वों का पूरा, हमारे पुराने विकारों, संस्कारों का। तो वो चारों तरफ से जब ये सब होगा, इसीलिए बाबा ने कहा इसमें विजय प्राप्त करने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? साक्षी दृष्टा की। और इसीलिए दृष्टा की बात बाबा समय प्रति समय हमेशा कहते हैं ना, मुरलियों में भी, शरीर है, ये सारी कर्मेंद्रियां है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कर्मेंद्रिय जिससे सावधान रहने की जरूरत है कौन सी है? ये आंखें। आज भी बाबा ने कहा ना, देखो अपनी दृष्टि, मेरी दृष्टि कहीं देह की तरफ चलायमान तो नहीं होती है। और इसीलिए क्योंकि देह में रहने का आत्मा को इतना 63 जन्मों का अभ्यास, 84 जन्मों का ही है, लेकिन विकारी दृष्टि का इतना गहरा अभ्यास तो 63 जन्मों का हो गया है। तो इस कारण से बाबा ने कहा आज भी दृष्टि, तो दृष्टि पर विजय प्राप्त करने के लिए अगर हम चाहते हैं कि सब हमारा योग बल इतना शक्तिशाली हो जाए कि कोई भी कर्म भोग बचे नहीं, सब अंत तक समाप्त हो जाए, हमारा योग बल कर्म भोग के ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तो उसके लिए साक्षी दृष्टा। और दृष्टा यानी दृष्टि को संपूर्ण रीति से दृष्टि पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने समय प्रति समय कई बात बताई है, लेकिन मुख्य अगर इन पांच बातों पर ध्यान देंगे तो ये अंतिम पेपर में हम 100% सब पास अवश्य होंगे ही होंगे। तो पहला ये समझना चाहिए दृष्टा क्या है। साक्षी दृष्टा बोलते हैं ना, तो दृष्टा है आत्मा और ये आंखें हैं दृष्टि। तो जैसे मानो हम खिड़की पर खड़े होके बाहर का दृश्य देखें, तो आत्मा देख रही है लेकिन खिड़की नहीं देख रही है मकान की, खिड़की के थ्रू हम बाहर का दृश्य देख रहे हैं और लेकिन है खिड़की के अंदर, मकान के अंदर। ऐसे ये आत्मा जो है वो है दृष्टा, हम इस स्थिति में रहिए दृष्टा, इस दृष्टि के द्वारा, ये जो आंखें जो है ये दृष्टि के द्वारा देख रही है। एक है दृष्टा, दूसरा दृष्टि, तीसरा है दृश्य। बाहर के जो भी संसार के हम दृश्य देख रहे हैं, चाहे कार्य व्यवहार के हों, जैसे ट्रेन में जाते हैं, कार में जाते हैं, पर दृश्य आते हैं, चलते जाते हैं, कोई दृश्य ठहरता नहीं, बस प्लेन, और हम लोग भी देखा दूसरा दृश्य, तीसरा, चौथा, उन दृश्यों में अटकते नहीं। बस यही स्थिति होनी चाहिए कि ये दृष्टा जब इस दृष्टि के द्वारा कोई भी बाहर के दृश्य देखे, संसार के दृश्य देखे, उनमें ठहरे, रुक न जाए, बस दृश्य अच्छा है, बुरा है, कहीं पर भी जब हम कहीं भी थोड़ा ठहर जाते हैं ना, तो वो दृश्य के वशीभूत हो जाते हैं। अच्छा है या बुरा है, और वो दृश्य फिर हमारे ऊपर अपना बहुत गहरा असर छोड़ देता है। इसलिए बाबा कहते हैं आते हैं दृश्य आया गया, बस कहीं रुके दी। तो तीसरा है दृश्य, और जो इस स्थिति में स्थित हो, कौन हो सकते हैं? इस स्थिति में स्थित जो है वो हो सकते हैं वो आत्माएं, जिनका की एटीट्यूड जो है, दृष्टिकोण जो है, वो बहुत बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। नेगेटिव पॉजिटिव तो हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हर चीज से, पेपर भी आए ना, उस पेपर से भी, नेगेटिविटी से भी हमें पॉजिटिविटी ड्राइव कर लेनी है, नकारात्मकता से भी सकारात्मकता उसको निकाल लेना है। तो हमारा दृष्टिकोण अगर यहाँ पर दिन भर में जो भी हो, बाबा ने कहा उसे देख करके उसके अंदर अपने काम की सकारात्मकता की चीज निकाल लो, नकारात्मकता नेगेटिविटी को छोड़ दो। इसीलिए जो बाबा कहता है हर चीज में भला है, कल्याण है। गीता में भी जो कहा है, भक्ति मार्ग में कोट करते हैं, जो हो गया वो अच्छा, जो हो रहा है और अच्छा, बहुत अच्छा, और जो होगा और भी अच्छा। दृष्टिकोण ही हमारा ये हो जाए परमानेंट कि मुझ आत्मा का अकल्याण अहित इस ड्रामा में लिखा ही नहीं है। संगम युग में ब्राह्मण बनने के बाद मैं हमेशा की विजयी आत्मा हूँ, बस ये जितना दृष्टिकोण रहेगा तो आगे हमारा अंत समय के पेपर के लिए हम बहुत बहुत अच्छी तरह तैयार होते जाएंगे, और वो ही हमें कर्म भोगों के ऊपर अंत में विजय प्राप्त कराएगा। और जब ये स्थिति हो जाती है तो इतिहास, हम इतिहास बनाने वाले हैं, इतिहास को पढ़ने वाले नहीं, इतिहास को बनाने वाले हम सब ब्राह्मण बच्चों के द्वारा बाबा एक नया इतिहास लिख रहा है। तो वो जो इतिहास लिखा जा रहा है, हम इतिहास लिखने वाले बच्चे, तो द्वापर युग से जो ऋषि मुनि सन्यासी जो हम लोगों के दृष्टांत लिखेंगे, वो दृष्टांत हमारा तभी लिखा जाएगा जब हम इस स्थिति में होंगे कि हम, मैं दृष्टात्मा इस दृष्टि के द्वारा ये दृश्य देख रही हूँ और ये मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव है, तो संसार में हमारे दृष्टांत लिखे जाएंगे और इतिहास में हम सभी ही अलग अलग व्यक्तियों के रूप में प्रसिद्ध होते जाएंगे भक्ति मार्ग में उस रीति से, और फिर जब ज्ञान में आएंगे तो इस रीति से। तो इसलिए अभी ये देखते हुए चलना है कि किस तरीके से हमें ये करना है, और इसके लिए अंत मते है सोगति जैसे बताया, और सारा आधार ही हमारा अंत के ऊपर, क्योंकि अंत में ना जैसी स्थिति होगी वैसे ही हमारी प्राप्ति और वैसी गति होगी। तो इसके लिए हमें क्या बाबा ने बताया, ब्रह्मा बाबा ने भी जब साक्षात्कार किए थे, हम सभी ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, यज्ञ इतिहास में क्या पढ़ा है, यज्ञ इतिहास में बाबा ने भी जो साक्षात्कार किए थे, विनाश का भी साक्षात्कार किया, कैसे एटॉमिक बम मिसाइल्स के द्वारा यूरोप वासी और ज्यादातर भारत के बाहर विनाश हो रहा है, और भारत के अंदर प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा और काफी हद तक सिविल वार के द्वारा इसमें सृष्टि को बदलना है। तो जब प्राकृतिक आपदा के द्वारा होगा, जिस पर किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं, अर्थक्वेक आता है, भूचाल आता है, एक सेकंड पहले तक भी कोई बता नहीं सकता भूचाल आने वाला है, आ जाता है, अब कैसे तबाही हो जाती है, व्यक्ति कितने प्राण छोड़ देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि हम ब्रह्मा बाबा की तरह, बस भीष्म पितामह की तरह अपनी इच्छा से शरीर छोड़े। देखो हम तो 18 जनवरी को यहीं थे और हमने देखा जैसे ब्रह्मा बाबा को आभास हो गया था कि बस आज मेरा ये अंतिम दिन है और आज मैं जैसे बच्चों के साथ बिल्कुल बाबा रहे भी लेकिन अंदर की वृत्ति से उपराम भी रहे और बाबा ने जो भी थोड़ा बहुत बचे हुए काम थे वो निपटा लिए। कैसे निपटा लिए हमने देखा और बाबा ने कहा सोचा तो 18 जनवरी की सुबह जब बाबा क्लास कराने आए, ऊपर हिस्ट्री हॉल में क्लास होता था, तो उस दिन बाबा ने क्लास में आके सिर्फ योग कराया और शायद पहली बारी हमने तो देखा था जिस दिन बाबा ने मुरली नहीं चलाई। आए बाबा ने दृष्टि दी, फिर ऐसा लगता था कि अब बाबा मुरली चलाएंगे, फिर बाबा दृष्टि देने लगते थे। एक एक बच्चे को बाबा ने बहुत गहन दृष्टि दी और सबसे ज्यादा दृष्टि तो सामने दादी प्रकाशमणि जी बैठे हुए थे उनको बाबा बार बार दृष्टि दे रहे थे क्योंकि बाबा को जैसे मालूम था कि बस जब ये शरीर ब्रह्मा का शरीर चला जाएगा तो इसके बाद तो इस बच्ची को ही संभालना है। तो शक्तियों की जैसे बल बाबा बार 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 लगातार भर रहे। तो बाबा ने एक तो ये करा, दूसरा बाबा ने मुरली चलाई और मुरली चला के बाबा जब गए तो बाबा ने बाहर जाके ईशु दादी, हाँ आप सब जानते हैं ना जो अभी भी विश्व कल्याणी में रहते हैं ईशु दादी जी, शुरू से बाबा के वो जैसे बाबा के यज्ञ के संरक्षक के रूप में ऑनेस्टी तो उनके रोम रोम में बसी हुई है। तो बाबा ने उनको पूरा अकाउंट उनके पास होता था और बाबा जो बोलते थे उसको शॉर्ट हैंड में लिख करके वो मुरली के रूप में सब जगह जाता था। तो उसमें बाबा ने कहा बच्ची आज जितने भी पत्र लिखाने हो लिखा लो, बस कोई भी पत्र ऐसा न रह जाए जिसका उत्तर न गया हो। पहले तो ये सब इंटरनेट और ईमेल होते नहीं थे तो सारे पत्र पूरे के पूरे ईशु दादी जी ने लिखा लिए और बाबा ने, देखो बाबा को पहले से आभास हो गया था इस चीज का। और उसके बाद बाबा ने जब पत्र तो उसके सारे पत्र लिख लिए, उसके बाद फिर बाबा ने ना क्या करा कि आके बस जो नक्की लेक के पास का म्यूजियम है उस म्यूजियम की बिल्डिंग लेने की बात चल रही थी वहां पर, तब तक लिया नहीं था, वहां प्रदर्शनी लगाई हुई थी लेकिन तब यज्ञ के संसाधन इतने ज्यादा नहीं थे तो कई दिनों से वो फाइल पड़ी थी। तो बाबा ने उसी दिन उस फाइल को क्लियर कर दिया क्योंकि कोई भी काम पेंडिंग ना रह जाए, अधूरा ना रह जाए, क्योंकि जो काम अगर अधूरा रह जाता है तो ऐसा कहा जाता है कि अंत में बुद्धि वहीं जाकर अटकती है। फिर तो एकदम अंत में अगर कोई काम याद आ गया, कोई बात याद आ गई तब बुद्धि वहां चली गई, फिर तो कर्मातीत अवस्था नहीं होगी। तो इसीलिए एक भी काम नहीं रहा और रोज रात को क्लास होती थी 8:30-9 के बाद। उस दिन बाबा ने कहा आज बाबा अभी मुरली चलाएगा, थोड़ी देर के बाद सब बच्चों को कह दो तो 6:30 के बाद भोजन करके सभी बच्चे आ जाए। तो हर एक बच्चे को ये खास इंस्ट्रक्शन थी कि भोजन करके आए। भोजन करके सब बच्चे पहुंच गए और 7 बाबा ने मुरली चलाई। और उस दिन की मुरली की ये विशेषता थी जैसा आज का विषय है, क्योंकि बाबा की एज भी 93 थी, बहुत ठंडी का मौसम था जनवरी का, तो कई बार बाबा को खांसी भी आती थी, पिछले 2 से हम लोग देखते थे। लेकिन उस अंतिम मुरली में बाबा को एक बार भी न खांसी आई, न कफ साफ करने की जरूरत पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि अंत समय तक कर्म भोगों के ऊपर, शरीर के जो कर्म भोग है उनके ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है। बिल्कुल एक बार भी इतनी फ्लॉलेस मुरली चली और वो आप भी वो मुरली मिला करती है 18 जनवरी की रात्रि क्लास का, तो उसे पेन ड्राइव में या सीडी में लेकर के उस मुरली को बार बार सुने, क्योंकि वो अंतिम कर्मातीत अवस्था बाबा ने जो प्राप्त की वो वाली मुरली है। इस तरह फिर बाबा बस उठे और बाहर गए दरवाजे तक। अच्छा, बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है, ये कह के बाबा बस सब बच्चों को फिर से पूर्ण संपूर्ण रीति से दृष्टि से प्यार से स्नेह से भरा और बाबा चले गए। और फिर अपने कमरे में जाके जैसे बाबा ने देह त्याग किया, दादी जी के हाथ में हाथ नैन मुलाकात करते हुए। लेकिन इसमें विशेषता शरीर का, तो देखो ये 5 तत्वों का बना शरीर है, लेकिन बाबा ने 18 जनवरी की अर्ली नाइट में शरीर छोड़ा और वो शरीर रखा रहा 18 की रात, 19 का सारा दिन, 19 की रात, 20 का सारा दिन, 20 की रात, और 21 को शरीर का संस्कार किया गया दोपहर के बाद, इतना लगभग 65 घंटे के बाद। लेकिन शरीर वैसा ही चमकता रहा, न शरीर में कोई दुर्गंध आया, शरीर को कोई इंजेक्शन भी नहीं दिया गया, कोई दवाई भी नहीं लगाई गई थी। उनसे तो शरीर को बहुत दिनों तक रख सकते हैं, लेकिन बिना कुछ लगाए भी इतने समय तक शरीर ऐसा चमकता रहा, लगता था जैसे बाबा अब उठ के फिर कहेगा हाथ फैला के कि आओ बच्चे, आओ मेरे मीठे। बाबा ऐसे ही हाथ फैला के सब बच्चों को जैसे अपनी बाह में भर लिया करते थे। तो ये शरीर 5 तत्वों का बना शरीर भी अंत तक पूरा साथ दिया, ये भी इस बात का प्रतीक है कि इन तत्वों को भी ना हमें पवित्र बनाना है, तब ये 5 तत्व भी हमारा अंत तक साथ देंगे। और जब ये तत्व अंत तक साथ देंगे तो एक तो ये है कि मन के ऊपर जैसे विजय पाने का, तत्वों को पवित्र करके और इस तरीके से हमें चलना है। तो बाबा ने किस प्रकार बनाया ये हमने देखा और हम समझते हैं ये बहुत बहुत सौभाग्य की बात है। हम सबके बीच में परम आदरणीय दादी जी आने वाली हैं, अब हम ये सभी मिल करके जो 2-3 मिनट योग करेंगे तो मन को, संस्कारों को तो हम प्रतिदिन करते ही हैं, लेकिन इन शरीर के 5 तत्वों का, जिन शरीर से हम, जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इनको भी हम प्रतिदिन ये संकल्प करें कि इनको भी हमें प्रतिदिन योगदान करना है, जिससे दादी जानकी जी को। हाँ, अभी हमारे सबका एक सबसे बड़ा सौभाग्य ये है, हम सबके बीच जो दादी जानकी जी हैं, इनको बाबा ने कौन सा एक विशेष विशेष वरदान दिया हुआ है। आपको मालूम है दादी जानकी जी का तबीयत बहुत खराब था, जब ये सदी का, ये 2000 शुरू नहीं, 1999 का 31 दिसंबर लास्ट डे अव्यक्त बाप दादा आते हैं, तो बाबा आए हुए थे यहीं पर शांतिवन में, तो निर्वैर भाई और दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी ने बाबा को बताया कि बाबा दादी जानकी जी की तबीयत तो बहुत खराब है, दादी जी लोटस में थे अहमदाबाद में और बहुत तबीयत खराब है। तो डॉक्टरों ने भी जैसे बहुत बोला है, जवाब जैसा दे दिया है, तो दादी, बाबा ने दादी को देखा, निर्वैर भाई जी को देखा और कहा देखो क्या महावाक्य उच्चारे। बाबा ने कहा कि वो आत्मा प्रकृति जीत आत्मा है, दादी जानकी के लिए है और बस, इसलिए कुछ नहीं होगा। तो देखो आज 20 साल हो गया, कहाँ इतना सीरियस तबीयत खराब अब दादी का, और कहाँ अब 20 वर्ष के बाद भी दादी देखो कितनी बेहद की सेवा कर रही है। ये प्रकृति जीत आत्मा जो हम सबके सम्मुख प्रैक्टिकल में है, ये हम सबके कितनी सौभाग्य की बात है। तो हम सब भी यहाँ पर योग में यही संकल्प भी लें कि मुझे भी मन जीते जगत जीत के साथ प्रकृति जीत भी बनना है, और बाबा को अंदर संकल्प में, क्योंकि हम भी बाबा आपके साथ विजयी होकर के अपने घर में चलेंगे। इसके साथ ही ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।